बोथा के उत्तराधिकारी राउत एवं ब्रितानी लेयर के बीच पुरावशेषों को खोज निकालने की होड़ ने तीव्र प्रतिद्वंदिता का रूप धारण कर लिया था। दोनों ने अनेक प्राचीन टीलों पर अपने अपने आदमी भेजकर दावे किए, जबकि तथ्य यह था कि उन टीलों के अंदर किस प्रकार की पुरानिधियाँ दबी हुई हैं, इसके विषय में उन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। सन 1853 में ब्रिटिश नागरिक होर्मुज़्द रसम इराक में लेयर्ड का उत्तराधिकारी हुआ। इसके समय में भी ब्रिटिश फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा चलती रही। नीनेवे के टीले के कयुंजिक नामक स्थान पर दिन में फ्रांसीसियों की ओर से उत्खनन होता था और रात भर रसम के मजदूर उसी जगह पर खुदाई करते थे तथा प्रातःकाल होने से पहले काम बंद कर देते थे। इस चालबाजी के परिणाम स्वरूप असुर बनीपाल 668 से 626 ईसा पूर्व के राजमहल के बहुत से चित्र तथा किलाक्षर लिपि में लिखित मिट्टी की पट्टियों का एक पुस्तकालय रसम के हाथ लगा। रसम ने यह भी जानकारी हासिल किया कि मिट्टी की पट्टियों को आग में पकाने पर उनको मजबूत एवं टिकाऊ बनाया जा सकता है। सन 1899 में 1914 के मध्य जर्मन पुरातत्वविदों ने भी मेसोपोटामिया क्षेत्र में उत्खनन करवाया। कोल्डीवी तथा अंद्रे के निर्देशन में बेबीलोन तथा असुर नगर के टीलों का उत्खनन किया गया। सन 1918 में कैंपबेल थॉमसन एवं हॉल नामक ब्रिटिश पुराविदों के निर्देशन में उर तथा एरिडू के टीलों का उत्खनन पृष्ठ संख्या 25 हुआ। ब्रितानी पुराविद लियोनार्ड बुली के निर्देशन में सन 1926 में उर की राजकीय समाधियों के उत्खनन से मेसोपोटामिया के क्षेत्र में विकसित होने वाली सुमेरिय सभ्यता का एक अज्ञात पक्ष अत्यंत नाटकीय ढंग से प्रकाश में आया। उर के उत्खनन के से ज्ञात हुआ कि रानी शुबात के साथ 74 अन्य लोग जिंदा दफनाए गए थे। रानी शुबात के श्रृंगार प्रसादन की पिटारियों में अंजन इत्र फुलेल लगाने की शलाकाओं से लेकर केश की पीने कान तथा दांत खोदने की सुनहरी शलाकाएं थी। सुनहरा ताज तथा अन्य बहुमूल्य आभूषण थे। धार्मिक प्रथा अनुसार सुमेरियन शासक अपने मृतकों को न केवल बहुमूल्य आभूषणों के साथ बल्कि अनेक प्रिय परिजनों के साथ विशेष रूप से बनाई गई समाधियों में दफनाते थे। इस प्रकार के एक मकबरे में शासक के साथ जिंदा दफनाए गए परिचारकों आदि की संख्या आधे दर्जन से लेकर 70-80 तक होती थी। यह प्रथा संभवतः मरणोपरांत की धार्मिक विचारधारा से संबंधित थी। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नील नदी की उर्वरा घाटी में स्थित मिश्र अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए विश्वविख्यात है। 15वीं शताब्दी ईस्वी से ही इटली के मानविकी विशारदों द्वारा मिश्र की पुरानिधियों का संकलन प्रारंभ हो गया था। इन विद्वानों की मिश्र के प्राचीन धार्मिक साहित्य में विशेष दिलचस्पी थी, जिसके संबंध में प्राचीन रोमन इतिहासकारों ने उल्लेख किया था। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 1797 ईस्वी नेपोलियन के सैनिक अभियान से मिस्र में पुरातत्व संबंधी गतिविधियों में तीव्रता आई। रोजेटा प्रस्तर की खोज नेपोलियन के सेनानायक अंद्रे जोसेफ बूसा ने सिकंदरिया के पास नील नदी के मुहाने पर रोजेटा से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित रशीद के किले फोर्ट ऑफ रेचिन की किलेबंदी के लिए खाई खोदते समय की थी। रोजेटा प्रस्तर 2 मीटर 96 सेमी लंबा तथा 1 मीटर 95 सेमी चौड़ा है। इसमें मिस्र के शासक पंचम टालमी के सम्मान में मेम्फिस नगर के पुरोहितों द्वारा आयोजित सामान्य धर्म सभा का उल्लेख हायरोग्लिफिक डेमाटिक एवं यूनानी ग्रीक इन तीनों लिपियों में उत्कीर्ण है। इससे यूनानी लिपि में अंकित अंश को फ्रांसीसी सेना के साथ संबद्ध विद्वानों ने फ्रांसीसी भाषा में शीघ्र ही अनुदित कर डाला था। इससे लेक के महत्व का आभास होने पर इसे फ्रांसीसी सेनापति जनरल जैक फ्रेंसवा द मेनो को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया था। सन 1801 में नेपोलियन की पराजय के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सैनिकों ने जनरल मेनो को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। फ्रांसीसी जनरल ने रोजेटा प्रस्तर को न देने के मंतव्य से उसे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बतलाया, लेकिन अंग्रेज सेनापति लॉर्ड हचिसन ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार यह प्रस्तर अन्य प्राचीन वस्तुओं के साथ सन 1802 में ब्रिटिश संग्रहालय पहुंच गया। पृष्ठ संख्या 26। इनको अंग्रेजों को सौंपने के पूर्व ही फ्रांसीसी विद्वानों ने इस त्रिलिपीय ट्रायंगुअल अभिलेख की छापे रबिंग बनाकर रख लिया था। इन्हीं प्रतिकृतियों के आधार पर फ्रांसीसी विद्वान सांपोलियो 1790 से 1832 ने सन 1822 में मिस्र के हायरोग्लिफिक लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ लिया था। मिस्र की प्राचीन चित्राक्षर लिपि का रहस्य खुल जाने पर वहां के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व के विषय में प्रगति का द्वार खुल गया। मिस्र में पुरातत्व संबंधी प्रगति में फ्रांसीसी विद्वानों की उल्लेखनीय भूमिका रही है, लेकिन अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन एवं इतालवी तथा स्वयं मिस्र के लोगों ने भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में मिस्र एवं फ्रांस के दूतावासों के संरक्षण में पुरावशेषों के संग्रह की होड़ मची हुई थी। ब्रिटिश दूतावास की ओर से महाबली, जियोबनी, बतिस्ता, वेलजोनी पुरानिधियों की लूटपाट कर रहा था। जिन प्राचीन वस्तुओं को उनके स्थान से हटाया नहीं जा सकता था, उन पर अपना दावा करने के लिए बेलजोनी टांकी छेनी से अपना नाम एवं दिनांक तराश देता था। बेलजोनी ने मिस्र के प्राचीन नगर थिब्स से अपना कार्य आरंभ किया तथा अनेक कब्रों की सामग्री की खुले आम लूट की। इसके पश्चात अबू सिम्बेल का उत्खनन किया। उसने दूसरे पिरामिड तथा थिब्स में मिस्र के प्रसिद्ध शासक द्वितीय रामसेस 1292 से 1225 ईसा पूर्व की 8 टन वजन की मूर्ति की खोज किया। वेलजोनी को प्राचीन वस्तुओं का निपट लुटेरा नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि उसने मिस्र के दो मकबरों की भीतरी दीवारों को मोम से छाप बनाने का समय साध्य कार्य भी पूरा किया था। इसके अतिरिक्त तत्कालीन प्रचलित मानदंडों के अनुसार उसका यह कार्य किसी तरह से अनुचित भी नहीं था। फ्रांसीसी दूतावास की ओर से द्रुयेती मिस्र में पुरावशेषों का संग्रह छलबल से कर रहे थे। बेलजोनी एवं द्रुयेती के व्यक्तियों में पुरावशेषों की प्राप्ति के लिए बकायदा मारपीट भी हो जाती थी, लेकिन इसी प्रकार के क्रियाकलापों ने सुलझे हुए सुयोग्य व्यक्तियों का ध्यान मिस्र की विपुल पुरानिधियों की ओर आकर्षित किया। सन 1850 में पेरिस के लुब्र संग्रहालय की ओर से ए मेरिए को मिस्र भेजा गया था। उसने गेम्फिस में स्थित सर्पियम के मंदिर का उत्खनन किया। यह मंदिर ओसिरिस एपिस से संबंधित था, लेकिन मेरिए फिर लुब्र वापस नहीं लौटा। वहीं रहकर वह मिस्र के प्रथम राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना में जुट गया। मूल देश से चोरी छिपे एवं गैर कानूनी ढंग से पुरावशेषों एवं पुरानिधियों के विदेशों में ले जाने के स्वार्थपूर्ण एवं अनैतिक कार्य को उसने अनुचित बतलाया। मिस्र को मकबरों एवं पुरावशेषों को लूटने वालों से मुक्त किया। मिस्र के तत्कालीन शासक केदीव इस्माइल ने सन 1867 में मिस्र पृष्ठ संख्या 27 की बहुमूल्य पुरानिधियों की पेरिस में एक प्रदर्शनी लगवाई। इसमें अनेक बहुमूल्य रत्न एवं आभूषण की प्रदर्शनी किए गए थे। फ्रांस की सामग्री यूजिन इन्हें देखकर इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें तोहफे के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। मिस्र के शासक इस्माइल दुविधा में पड़ गए। तभी इन्हें मेरिए की याद आई और फ्रांस की साम्राज्ञी को यह संदेश भेजा कि वे इसके विषय में मेरियो को लिखे, क्योंकि पुरानिधियों के संबंध में वह बादशाह से भी बड़ा व्यक्ति है। मेरियो ने इस अनुरोध को अत्यंत दृढ़ता के साथ ठुकरा दिया और इस प्रकार मिस्र की पुरानिधियों पेरिस से स्वदेश सुरक्षित लौट सकी। मेरिये के उत्खनन संबंधी तौर तरीके आज की दृष्टि से बहुत ठीक नहीं थे, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वह किसी टीले या मंदिर के मलबे को हटाने के लिए डायनामाइट का प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाता था। यही नहीं, वह अपने उत्खननों की रिपोर्टों का प्रकाशन भी समुचित ढंग से नहीं करता था। कभी कभी तो रिपोर्ट प्रकाशन बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन इन कमियों के बावजूद मिस्र में पुरातत्व संबंधी मेरिये के क्रियाकलापों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। स्कॉटलैंड निवासी फ्लिंडर्स पेत्री 1835 से 1942 का नाम पुराविदों में विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने मिस्र के पुरातत्व की अनुपम सेवा की थी। सन 1880 में मिस्र की पुरातात्विक संपदा ने पेत्री को अपनी ओर आकर्षित किया।